पूर्व पाठ में मीमांसकों की खिंचाई चल रही थी, उसमें ये था कि दो आपत्ति को दिखा करके, दो नहीं बल्कि तीन आपत्ति को दिखा करके जो है व्याकरणों ने उनकी खिंचाई की है। पहला कहा कि अगर आप ती प्रत्यय का अर्थ व्यापार मानेंगे, नहीं धातु का अर्थ केवल फल मानेंगे, तो जैसे ग्राम संयोगवान प्रयोग होता है उस तरह से ग्रामो गमनवान यह भी प्रयोग होने लगेगा, क्योंकि आपके यहाँ गमन का अर्थ जो है फल मात्र होगा माने संयोग होगा, तो आपके यहाँ गमनवान का अर्थ क्या होता है संयोगवान, तो संयोगवान गांव रहता है इसलिए ग्रामो गमनवान यह भी प्रयोग होने लगेगा। फिर दूसरी आपत्ति देते हैं कि फल अनुत्पाद दशायाम व्यापार सत्व, मान लीजिए कि कोई रसोई बना रहा है उसमें फल अनुत्पाद दशा है, दशा माने अवस्था स्थिति, माने फल की अनुत्पत्ति है, फल अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है और व्यापार सत्व और पाक व्यापार जो है वो चल रहा है, ऐसी स्थिति में पाको भवती या तो प्रयोग किया जाता है लेकिन इति अनापत्ति ही, इस तरह की अनापत्ति होगी। अब मैंने बताया हुआ है आपत्ति मतलब होना, अनापत्ति मतलब न होना, तो होना न होना में प्रयोग जोड़ लीजिए कि प्रयोग का होना हुआ आपत्ति और अनापत्ति मतलब हुआ प्रयोग का न होना। तो चूंकि आपने जो है धातु का अर्थ केवल फल माना है, तो जब फल वर्तमान में रहेगा तभी हम पाको भवति प्रयोग कर सकेंगे आपके मत में, आ जबकि ऐसा नहीं होता है, वर्तमान में अगर फल नहीं भी है भविष्य में भी फल होने वाला है तो भी कहते हैं पाको भवति, लेकिन आपके सिद्धांत में फल अनुत्पाद दशायाम, फल का जब अनुत्पाद है फल उत्पन्न नहीं हुआ है और व्यापार जब चल रहा है पाक व्यापार, उस समय में जो पाको भवति यह जो प्रयोग होता है भविष्य में उत्पन्न होने वाले फल को दृष्टि में रख करके, यह प्रयोग अनापत्ति ही, यह प्रयोग नहीं हो पाएगा। और ये तो अनापत्ति का दिया, अब एक आपत्ति भी देते हैं कि व्यापार विघमे, माने पाक व्यापार का जब विगम हो गया माने वह जब खत्म हो गया और फल सत्व और फल अगर विद्यमान है, ऐसी स्थिति में पाको विद्यते इति आपत्ति, पाक हो रहा है इस तरह का संस्कृत में पाको विद्यते यह प्रयोग होने लगेगा। आप जानते हैं ना, मान लीजिए किसी ने चावल बनाया, चावल बना करके वो चला गया, चला गया तो वो व्यापार का विगम हो गया, लेकिन फल तो सत्व है ना, वह विकलित्ति का आश्रय जो है वह भात वह तो वहाँ पर है ही, तो व्यापार विगमे आ फल सत्व, ऐसी स्थिति वहाँ पर है उसमें पाको विद्यते यह प्रयोग होने लगेगा, जबकि ऐसा प्रयोग तो तब होता है जब पाक व्यापार चल रहा होता है। अब क्या होगा, पाक व्यापार खत्म होने के बाद भी जो है चूंकि वहाँ पर भात किचन में विद्यमान है तो उस फल की दृष्टि से पाको विद्यते प्रयोग होगा, क्योंकि पाक का अर्थ क्या होगा इनके मत में फल होगा, पाक माने विकलित्ति, तो विकलित्ति तो वहाँ पर है ही, तो इस तरह से जहाँ पाको भवति प्रयोग नहीं होना चाहिए वहाँ पाको भवति प्रयोग होने लगेगा, जहाँ पाको विद्यते प्रयोग नहीं पाको भवति जो है जहाँ प्रयोग होना चाहिए वहाँ नहीं होगा, और पाको विद्यते जहाँ नहीं होना चाहिए वह प्रयोग होने लगेगा, इस तरह से यही है तस्मात, वह जो तस्मात कारिका में आया था ना, तस्मात हेतु मन इस हेतु से, तो इन्हीं हेतुओं से अर्थात ग्राम संयोगवान जैसे प्रयोग होता है वैसे आपके मत में ग्रामो गमनमान भी प्रयोग होने लगेगा, क्योंकि संयोगवान और गमनमान में कोई अंतर नहीं है आपके सिद्धांत में। दूसरा ये कि पाको भवति यह प्रयोग होना चाहिए कहाँ पर, जहाँ पर फल उत्पन्न नहीं हुआ है और व्यापार चल रहा है पाक व्यापार, ऐसे में पाको भवति प्रयोग होना चाहिए जो कि प्रयोग नहीं होगा। तीसरा, व्यापार जब खत्म हो गया है और फल विद्यमान है उस समय में पाको विद्यते यह प्रयोग होने लगेगा जो कि नहीं होना चाहिए। इन्हीं हेतुओं से जो है आपका मत जो है, मीमांसकों का जो मत है कि ती का अर्थ व्यापार है, प्रत्यय का अर्थ व्यापार है, वह सही नहीं है। अब आगे फिर देखते हैं कि यत्तु भाव प्रत्ययस्य घयादेहे अनुकूल व्यापार वाचकत्वात् न अनुपपत्ति इति, मीमांसक कहते हैं कि भाव यहाँ पर जो है ग्रामो गमनवान वाला जो दोष दिया था ना, उसके लिए जवाब देते हैं कि गमन में क्या है, गम धातु है और भाव में ल्युट प्रत्यय किया गया है तो फिर गमन बना। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर हो, जहाँ पर भाव प्रत्यय हो, वहाँ पर घय आदि है, घय आदि आदि से हम ल्युट प्रत्यय को भी ले लें, क्योंकि भाव अर्थ में घय भी होता है, भाव अर्थ में ल्युट भी होता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर भाव में प्रत्यय हुआ हो, वहाँ पर अनुकूल व्यापार अर्थ होता है। अनुकूल व्यापार अर्थ मतलब दोनों अर्थ होता है, फल भी होता है और व्यापार भी होता है। और जहाँ पर भावार्थक प्रत्यय नहीं है, जैसे पचति भवति लिखति, इसमें कर्ता अर्थ में ती प्रत्यय आया है, तो ऐसी जगह पर जो है केवल ती का अर्थ व्यापार होता है। और जहाँ पर भाव प्रत्यय हो, भाव घय आदि प्रत्यय हुआ हो, वहाँ पर जो है फलानुकूल व्यापार, ये दोनों अर्थ होता है। और इस तरह से होने के कारण नौ अनुपपत्ति ही, तो अब क्या होगा, गमन बान का अर्थ क्या होगा, विकलित अनुकूल व्यापार बान, ऐसा अर्थ होगा। तो ऐसा अर्थ होगा तो फिर विकलित अनुकूल व्यापार बान ग्राम होता नहीं है, इसलिए ग्रामो गमन बान प्रयोग नहीं होगा। इस तरह से इन्होंने समाधान किया मीमांसकों ने कि जहाँ पर भाव प्रत्यय होता है वहाँ पर दोनों अर्थ होते हैं, माने फल भी अर्थ होता है, व्यापार भी अर्थ होता है। और दोनों अर्थ होने के कारण चूंकि ग्राम जो है संजोगवान तो है मगर व्यापारवान नहीं है, इसलिए ग्रामो गमनवान प्रयोग नहीं होगा। तन्ना कहा कि ये जो आपका तर्क है ये सही नहीं है, क्योंकि कर्त्रा आख्यातवत कर्तरकृत इत्यतः एव तद विधाने विधान लाभे भावे विधायक अनुशासन व्यर्थ्यापत्ति है। कहा कि आपने अभी क्या किया, तो तिङन्त के लिए अलग मान्यता मान ली और कृदन्त के लिए अलग मान्यता मान ली। तिङन्त में आपने कहा कि तिङ का अर्थ जो है केवल व्यापार होता है, और कृदन्त में गमन में या पाकह में आपने क्या किया कि ल्युट प्रत्यय का या घय प्रत्यय के दोनों अर्थ मान लिए, फलानुकूल व्यापार अर्थ मान लिया। ये जो आपने अंतर किया ये अंतर करना सही नहीं है, क्योंकि लह कर्मन च भावे चाकर्म के भ्यज जो सूत्र है, इस सूत्र से कर्ता अर्थ में कर्म अर्थ में प्रत्यय का विधान होता है, और उसमें लह कर्मन च भावे चाकर्म के भ्यज में कर्तरि पद नहीं है, उसकी अनुवृत्ति आती है कहाँ से, कर्तरि कृत सूत्र से कर्तरि की अनुवृत्ति आती है। तो कर्तरि कृत से जब कर्तरि जाता है लह कर्मन च भावे चाकर्म के भ्यज में, तो दोनों कर्तरि तो एक ही है ना, क्योंकि कर्तरि कृत सूत्र का ही कर्तरि जो है यहाँ भी है और लह कर्मन च भावे चाकर्म के भ्यज में भी है, तो दोनों का अर्थ बिल्कुल समान होना चाहिए। वही कह रहे हैं कि कर्तृ आख्यातवत माने कर्ता अर्थ में जब आख्यात आता है, जैसे पचति भवति में कर्ता अर्थ में तिंग प्रत्यय आया है, उसकी तरह कर्तरिकृत इत्यतः एव, उसी तरह से कर्तरिकृत यह जो सूत्र है, यह सूत्र भी क्या तद विधान लाभे, उसका जो है विधान होगा, माने घय प्रत्यय ल्युट प्रत्यय इसका भी जो है कर्ता अर्थ में विधान होगा। भावे विधायक अनुशासन भी अर्थ्यापत्ति, फिर जो है भाव में अनुशासन करने की क्या जरूरत है, आप जानते हैं कि भावे सूत्र है, भावे सूत्र से घय प्रत्यय का या ल्युट प्रत्यय का जो है विधान किया जाता है। तो अगर उसका अर्थ वही हो, व्यापार ये जो है पचति और भवति में ती की तरह अगर हो, माने पचति और भवति में आपने क्या किया था, ती का अर्थ केवल व्यापार माना था, और गमन में या पाक में ल्युट प्रत्यय या घय प्रत्यय जहाँ हुआ है वहाँ आपने क्या अर्थ मान लिया, फल भी अर्थ मान लिया और व्यापार भी अर्थ मान लिया, ये दो प्रकार के जो अर्थ मान लिए, ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि यहाँ कर्तरि कृत एक सामान्य सूत्र कहता है कि जितने भी कृत प्रत्यय हैं वो कर्ता अर्थ में हों, और भावे सूत्र जो है ये कहता है कि भाव अर्थ में जो है ल्युट प्रत्यय या घय प्रत्यय हो। तो ये दो तरह का जो है जो सूत्र बनाया पाणिनि ने, कर्ता में विधान का अर्थ में विधान करने के लिए कर्तरिकृत विधान किया, भावे में विधान करने भाव में विधान करने के लिए भावे सूत्र बनाया, ये दो तरह के सूत्र बनाने की क्या जरूरत है, कुछ तो है मतलब कुछ तो अंतर है इसमें। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत समझ में नहीं आया होगा, तो इसको हम समझते हैं, क्या है कि सूत्र की व्याख्या जो है व्याकरण भी करते हैं, मीमांसक भी करते हैं, न्यायिक भी करते हैं, सब अपने अपने अनुसार व्याख्या करते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि कर्तरीकृत में कर्तरी का अर्थ है कर्ता, यही कर्तरी जाता है लह कर्म जब भावे चाकर्म के भ्याह उसमें कर्तरी की अनुवृत्ति होती है तो वहाँ भी कर्ता अर्थ होता है, माने कर्ता अर्थ में ही तिंग भी होता है और कर्ता अर्थ में ही कृत प्रत्यय भी होता है। हमारी व्याख्या ये है, मीमांसकों का की सोच अलग है। मीमांसक क्या मानते हैं कि तिंग का अर्थ व्यापार है, लेकिन सूत्र तो पाणिनि का ही लगाना पड़ेगा। मीमांसकों के यहाँ तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो पचति भवति में जो है लत पच धात से लत लकार को लावे, तो पाणिनि का ही सूत्र लगाना होगा। तो पाणिनि का सूत्र अगर लगाएंगे लह कर्म ने च भावे चा कर्म के भ्या, तो वह तो क्लियर कट कहता है कि कर्म अर्थ में कर्ता अर्थ में लट आता है। तो फिर उनका जो सिद्धांत है कि व्यापार अर्थ लट वाला वो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए वो अपने अनुसार से व्याख्या ये करते हैं कि ऐसा है कि कर्तरी का अर्थ है, कर्तरी का अर्थ कर्ता अर्थ में ऐसा नहीं है, कर्तरी का अर्थ है कर्तृत्व अर्थ में। अब लीजिए उन्होंने कर्ता का अर्थ क्या मान लिया मीमांसकों ने, कर्तृत्व, कर्ता अर्थ नहीं माना, कर्तृत्व अर्थ मान लिया। अब ये कर्तृत्व क्या है, तो कर्ता में रहने वाला जो त्व माने धर्म वह होता है कर्तृत्व। तो कर्ता में कौन सा धर्म रहता है, व्यापार रहता है, क्योंकि कर्ता का लक्षण क्या है, व्यापार आश्रय कर्ता, व्यापार का जो आश्रय हो वह होता है कर्ता। तो आश्रय हो गया कर्ता, उसमें कौन रहेगा, व्यापार रहेगा, तो कर्तृत्व का अर्थ हो गया व्यापार। तो इस तरह से कर्तरी का अर्थ जो है मीमांसकों ने क्या किया, कर्तृत्व अर्थ किया, और कर्तृत्व माने व्यापार अर्थ हो गया, तो उनका सिद्धांत बैठ गया कि व्यापार अर्थ में जो है लट आता है या व्यापार अर्थ में तिंग रहता है। तो ऐसे ही जो है कर्तरीकृत में भी जो है उनका यही चलेगा कि कर्तरी का अर्थ हो जाएगा कर्तृत्व, कर्तृत्व माने व्यापार, माने व्यापार अर्थ में कृत प्रत्यय होता है, तो कृत प्रत्यय का अर्थ जो है व्यापार निकलेगा। तो इस पर वैयाकरण कहते हैं कि लीजिए यदि आपने कर्तरीकृत का जो है कर्ता का अर्थ व्यापार अर्थ कर लिया, तो फिर इसी से जो है ना घय प्रत्यय हो जाएगा ना व्यापार अर्थ में और लुट प्रत्यय में, अलग से पाणिनि ने भावे सूत्र क्यों बनाया व्यापार अर्थ में विधान करने के लिए। इससे सिद्ध होता है कि कर्तरीकृत का जो कर्ता है वह व्यापार अर्थ को नहीं बताता है, वह कर्ता अर्थ को ही बताता है, और व्यापार अर्थ में प्रत्यय करने के लिए भावे सूत्र का विधान किया गया है। तो इस तरह से जो दो सूत्र पाणिनि ने बनाए हैं, कर्ता अर्थ में विधान करने के लिए कर्तरीकृत, भाव अर्थ में विधान करने के लिए भावे, ये इन दोनों सूत्रों का विधान करना जो है व्यर्थ होने लगेगा। यदि आप कर्तरी का अर्थ व्यापार करेंगे तो फिर व्यापार अर्थ में कर्तरीकृत से हो ही जाएगा, भावे सूत्र की जरूरत नहीं है, यही बात यहाँ कही गई है। फिर से देखते हैं कर्त्री आख्यातवत, जैसे आपने कर्ता का अर्थ व्यापार मान करके कहते हैं कि उसमें आख्यात आता है, व्यापार अर्थ में तिंग प्रत्यय आता है, उसी तरह से कर्तरीकृत से ही जो है व्यापार अर्थ में कृत प्रत्यय आएगा, तद विधान लाभ है, माने ये जो है घय ल्युट इस सब का विधान का लाभ हो जाएगा कर्तरीकृत से। तो फिर अलग से भावे जो विधायक अनुशासन है, अनुशासन माने शास्त्र, विधायक माने विधान करने वाला जो शास्त्र है भावे, ये व्यर्थ्या प्रत्यय, ये व्यर्थ होने लगेगा, क्योंकि इसका काम जो है, इसका काम क्या है, व्यापार अर्थ में कृत प्रत्यय करना, वह काम तो कर्तरीकृत ही कर देगा, तो इस सूत्र की व्यर्थता हो जाएगी। तद विरोधापत्तेश्च, और इस से आपका विरोध भी होगा, विरोध कैसे होगा, क्योंकि आप क्या करते हैं मतलब यहाँ पर घय, ये जो घय और ल्युट प्रत्यय है उसका अर्थ आप व्यापार मानते हैं, तो इसके साथ आपका विरोध होगा, क्योंकि पाणिनि ने जो दो तरह के सूत्र बनाए हैं वो चूंकि दोनों सूत्र अलग अलग अर्थ को बताते हैं, एक बताता है कि कर्ता अर्थ में हो, एक कहता है कि व्यापार अर्थ में हो, भाव अर्थ में हो, और आपके अनुसार जो है वहाँ पर क्या अर्थ होता है, दोनों अर्थ होगा, फलानुकूल व्यापार, यही कहा था ना इन्होंने, तो फलानुकूल व्यापार अर्थ अगर आप घय आदि में मानते हैं तो पाणिनि का जो सूत्र है भावे, इससे विरोध हुआ ना, क्योंकि भावे कहता है कि केवल व्यापार अर्थ में प्रत्यय हो घय और ल्युट, आपने घय ल्युट का जो है फल भी अर्थ मान लिया, व्यापार भी अर्थ मान लिया, तो विरोधापत्ति हो गई। तो इस तरह से मीमांसकों के मत का खंडन करते हुए आगे फिर कहते हैं अथो व्यापारोपी धातुअर्थ इति अभ्युपेयम इति चेत, ताकि यदि इस विरोध के कारण ये जो कर्तकृत और भाव है ये जो दो तरह का सूत्र है इससे विरोध के कारण व्यापारोपी धातुअर्थ, व्यापार भी जो है वह धातु का अर्थ होता है, फल भी धातु का अर्थ होता है, इति अभ्युपेयम ऐसा स्वीकार अगर कर लेते हैं, अभ्युपेयम माने स्वीकर्तव्यम अगर स्वीकार करना चाहिए चेत तभी धातुतः एवं सकल व्यापार लाभ संभवे न, तो फिर जो है चाहे कृत कृदंत स्थल का व्यापार हो चाहे तिंगंत स्थल का व्यापार हो, धातु तो दोनों जगह रहती ही है, तिंगंत में भी पच धातु रहेगी पचति में, और कृदंत जो पाच का है उसमें भी पच धातु रहेगी, तो कृदंत और तिंगंत दोनों स्थल का जो व्यापार है उसका लाभ संभव हो जाएगा धातु से ही। आख्यात पृथक शक्ति कल्पने गौरवम, तिंग का जो है अलग से उसमें शक्ति की कल्पना करना, अलग से कैसे कल्पना करना, क्योंकि मीमांसकों के यहाँ क्या है कि कृदंत स्थल में जो है वह कृत प्रत्यय का अर्थ होगा व्यापार, और तिंगंत स्थल में तिंग प्रत्यय का अर्थ होगा व्यापार, इस तरह से पृथक शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, कृत प्रत्यय में भी शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी व्यापार अर्थ की शक्ति कल्पना, और तिंगंत स्थल में व्यापार अर्थ की शक्ति कल्पना तिंग में करनी पड़ेगी, इस तरह से पृथक शक्ति कल्पना अगर करते हैं तो यह गौरव होगा उन्हें बोझा बढ़ जाएगा, तो इस तरह से धातु का अर्थ ही जो है व्यापार मानना चाहिए। अब आगे वो विवरण वाली जो बात आई थी कि पचत इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणम, विवरणात्मा आत्मा माने स्वरूप, विवरणात्मा माने विवरणम, केवल इतना समझ लीजिए, तो पचति का जो विवरण है पाकं करोति, यह जो विवरण है इसमें करोति धातु है एवं व्याख्यानम, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि करोति पाकं करोति में जो करोति है वह धातु है एवं व्याख्यानम, धातु का ही व्याख्यान है, व्याख्यानम का अर्थ क्या होता है तो विवरणम अर्थ विवरणम, अतः तदपि न आख्यातर्थत्व साधकम, विवरण के आधार पर जो आप सिद्ध करते हैं कि पचति का विवरण होता है पाकम करोति और करोति जो है वह तिंग का अर्थ विवरण है, इससे सिद्ध होता है कि तिंग का अर्थ व्यापार है, यह जो है कहना आपका साधक नहीं है, यह उचित नहीं है, क्योंकि यह जो विवरण है करोति वह धातु के अर्थ का ही है। मीमांसकोक्तम बाधकम उद्धरण तन्मतम दूषयति न तु इत्यादिना, इस तरह से यह जो कारिका है इस कारिका में मीमांसक की जो बात है उस बात को कहते हुए बाधकम उद्धरण और उसका उस बात को खंडन करने के लिए उद्धरण देते हुए तन मतम दूषयति माने मीमांसक मतम दूषयति, मीमांसक के मत को दूषित किया जाता है कारिका की दूसरी पंक्ति में न तु इत्यादिना, नौतु इत्यादि नाम में क्या है नौ असोतिंगाम व्याख्यानम, यह जो करोति है वो तिंग का व्याख्यान नहीं है, पक्वान इत्यादो अनन्वयापत्ति है, क्योंकि पक्व अगर वह तिंग का व्याख्यान होगा तो फिर पक्वान में अनन्वय होने लगेगा, अनन्वय मतलब अन्वय कहते हैं संबंध को और अनन्वय कहते हैं संबंधाभाव को, तो पक्वान में जो है करोति का संबंध नहीं बैठ पाएगा। अब ये कैसे संबंध नहीं बैठेगा, कैसे अनन्वय की आपत्ति होगी, इस बात को आगे अयम भाव से जो है बता रहे हैं, तो आज का पाठ यहीं पर संपन्न करते हैं।